ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। संसद अवरोध हटने की सूरत में एमसीसी को संसद में टेबल करने देने का निकपा एकीकृत समाजवादी का निर्णय। देश में आज कोरोना के 350 नए मामले आए सामने। संक्रमित चार की हुई मौत। और यूक्रेन से टूटकर अलग हुए रूस समर्थित पूर्वी क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ने के बाद सैन्य तैनाती के आदेश हुए जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा ने कहा कि देश में हुए युगांतकारी राजनीतिक परिवर्तन को संस्थागत करने के लिए लोकतांत्रिक विधि और पद्धति के प्रति सभी को प्रतिबद्ध होना चाहिए। 72वें राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर आज मूल समारोह समिति द्वारा सैनिक मंच टूड़ीखेल में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री देववा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि समृद्ध और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए सरकार, नागरिक समाज, प्रतिपक्ष सहित सभी को प्रतिबद्ध होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि आगामी स्थानीय तह चुनाव और उसके तुरंत बाद होने वाले प्रादेशिक और संघीय चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और भय रहित वातावरण में संपन्न होंगे। प्रधानमंत्री देववा ने विक्रम संवत 2007 साल में प्रजातंत्र हासिल करने के लिए हुई क्रांति के दौरान की विभिन्न घटनाओं का स्मरण करते हुए विक्रम संवत 2007 साल में आज ही के दिन प्रजातंत्र की हुई घोषणा का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा ने गोरखा पत्र को नेपाल की राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का साक्षी बताया। कोहलपुर में गोरखा पत्र संस्थान के प्रकाशन गृह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री देववा ने वर्तमान डिजिटल युग में गोरखा पत्र को और अधिक संतुलित और व्यावसायिक बनाने का सुझाव दिया। इसी तरह संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि गोरखा पत्र ने पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसी वजह से यह सरकारी अखबार से ज्यादा राज्य के अखबार के तौर पर पाठकों के बीच पहचाना जाता है। निकपा एकीकृत समाजवादी ने कहा है कि अगर संसद का अवरोध हट जाए तो वो एमसीसी को संसद में टेबल करने देगी। आज एकीकृत समाजवादी की स्थायी समिति की हुई बैठक ने संसद में विचार विमर्श का वातावरण बनने की स्थिति में एमसीसी समझौते को संसद में पेश करने से न रोकने का निर्णय किया। हालांकि बैठक ने यह भी कहा है कि ये यथास्थिति में ही एमसीसी समझौते को सर्वसम्मति से पारित नहीं किया जा सकता। ये बात निकपा एस के प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा ने बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आवश्यकता अनुसार अन्य निर्णय करने के लिए केंद्रीय सचिवालय को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय भी बैठक ने किया है। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति धनराज गुरुंग ने विभिन्न दलों से एमसीसी को देखने के राजनीतिक दृष्टिकोण को बदलने का आग्रह किया है। आज चितवन में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उपसभापति गुरुंग ने कहा कि एमसीसी को राजनीतिक दलों के विभिन्न कोणों देखने के कारण ही वर्तमान समस्या उत्पन्न हुई है। प्रधान न्यायाधीश चोरिंद शमशेर जबरा पर महाभियोग के संदर्भ में उन्होंने कहा कि न्यायालय को चला सकने में असमर्थ होते हुए भी मार्ग प्रशस्त करने की बजाय समस्या को चुपचाप देखते रहे, इसलिए महाभियोग दर्ज करना पड़ा। पूर्व अर्थमंत्री डॉ रामशरण महत ने कहा कि नेपाल में इस समय अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को लेकर हो रही आलोचना के मुद्दे जायज नहीं हैं। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ये कहते हुए कि एमसीसी परियोजना देश के हित में है, डॉ महत ने इसे संसद से पारित करने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परियोजना के पारित होने पर देश के लिए घातक होने और अमेरिका सेना के नेपाल आने जैसी अटकलें गलत हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी देश हित और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आड़े नहीं आना चाहिए। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉ शेखर कोइराला ने एमसीसी को विशुद्ध विकास निर्माण की परियोजना बताते हुए कहा कि ये नेपाल की जनता के हित में है। आज विराटनगर में आयोजित कार्यक्रम में नेता कोइराला ने ये बात कही। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि एमसीसी में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि एमसीसी का देश में आने का मतलब देश में विदेशी सेना आएंगी ही। इसका मुख्य उद्देश्य देश में विकास निर्माण तथा गरीबी निवारण कर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलीकॉम को 4G
सब को यो विश्वास होनी नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी बनाऊ सुरक्षित एवं सुखद जीवन यापन गरौं
नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
अब बाकी समाचार नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि आगामी वैशाख 30 गते होने वाले स्थानीय तहों के निर्वाचन को निष्पक्ष रूप से संचालित करने का आग्रह कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों से किया आज भक्तपुर में सूर्य विनायक नगर अस्पताल का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष ओली ने कहा कि कर्मचारियों और प्रशासन को निर्वाचन निष्पक्ष कराने में सहयोग करना चाहिए प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थापलिया ने आगामी स्थानीय तह के चुनाव में राजनीतिक दल और उम्मीदवार को रेड कार्ड दिखाने की नौबत न आए कहते हुए दलों और उम्मीदवारों को नियम पालन का सुझाव दिया आज छठवें निर्वाचन दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थापलिया ने ये बात कही इस बात का जिक्र करते हुए कि फुटबॉल के खिलाड़ियों को नियम उल्लंघन की स्थिति में विभिन्न कार्ड दिखाकर सचेत कराया जाता है लेकिन निर्वाचन में दिखाए जाने वाले कार्ड थोड़े खतरनाक होते प्रमुख आयुक्त थापलिया ने इस बात को समय रहते महसूस करने का दलों से आग्रह किया जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि वर्तमान समय में चुनाव में भाग लेना महंगा होता जा रहा है इस वजह से ईमानदार और नैतिकवान व्यक्ति निर्वाचित होने के अवसर से वंचित हो जा रहे हैं आज वीरगंज में आयोजित कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी नेपाल की समायोजन घोषणा समारोह को संबोधित करते हुए अध्यक्ष यादव ने कहा कि संघीय लोकतंत्र और गणतंत्र को संस्थागत करने के लिए छोटी पार्टियों को समाहित करते हुए ये पार्टी आगे बढ़ी है देश भर में आज कोरोना के 350 नए मामले सामने आए हैं जबकि 1272 संक्रमण मुक्त हुए हैं और 4 मरीजों की मौत हो गई बहरहाल देश भर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 13,357 है आज ही देश भर में 7,69,576 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी है वैशाख 1 गते से गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाएंगी ये जानकारी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले ने दी आज विमानस्थल का मुआयना करने भैरवा पहुंचे मंत्री आले ने बताया कि भारत के साथ सीधे मार्ग की अनुमति लेने के लिए पहल हो रही है अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार यूक्रेन से टूटकर अलग हुए रूस समर्थित पूर्वी क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ने के बाद सैन्य तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं स्वघोषित गणराज्यों डोनेत्स्क और लुहस्क में लड़ने के लिए योग्य उम्र के सभी युवाओं को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा हालांकि रूस इस आरोप का खंडन करता रहा है और यूक्रेन रूस के बीच पिछले कई हफ्तों से तनाव अपने चरम स्तर पर है इसके साथ ही पश्चिमी देश लगातार रूस पर पूर्वी क्षेत्रों में एक फर्जी संकट खड़ा करने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं जिसके बहाने से हमला किया जा सके आज सुबह गोलाबारी की एक घटना में यूक्रेन के एक सैनिक की मौत हो गई जो कि पिछले कई हफ्तों में सामने आया पहला ऐसा मामला है अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बताया कि रूसी सेना धीरे धीरे यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ रही है इसी बीच जर्मनी के शहर म्यूनिख में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक सुरक्षा कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर रूस ने हमला किया तो अमेरिका और उसके सहयोगी उसकी वित्तीय संस्थाओं और मुख्य उद्योगों के साथ साथ इस हमले में मदद और इसके लिए उकसाने वालों पर भारी आर्थिक हर्जाना लगाएंगे अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन संसद अवरोध हटने की सूरत में एमसीसी को संसद में टेबल करने देने का नेकपा एकीकृत समाजवादी का निर्णय देश में आज कोरोना के 350 नए मामले आए सामने संक्रमित 4 की हुई मौत और यूक्रेन से टूटकर अलग हुए रूस समर्थित पूर्वी क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ने के बाद सैन्य तैनाती के आदेश हुए जारी इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए सुनते रहिए रेडियो नेपाल शुभरात्रि